डियर फ्रेंड्स, हर समाज एक व्यवस्था से चलता है। इस व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए कई रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, पर कई बार हम में से ही कोई किसी कारण से उन नियमों को मानने से मना कर देता है, और कई बार केवल एक ही के कारण पूरी व्यवस्था के चरमराने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, यही बात समझाऊंगा मैं शैलेंद्र भारती हमारी आज की भागवत पुराण की इस कथा से। यह कथा है कालिया नाग और कृष्ण की। मूल कथा तो शायद आप लोग जानते ही हैं, उसकी बैक स्टोरी और भी अद्भुत है, जरा सुनिएगा। कथा वहां से शुरू होती है जब गरुड़ और नाग जाति में भयंकर युद्ध हो गया। गरुड़ नागों का संहार करने लगे थे, तब युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता किया गया। इसके अनुसार हर महीने की अमावस्या के दिन एक चुने हुए वृक्ष के नीचे एक सर्प दे दिया जाएगा जो गरुड़ों का आहार होगा। सर्प जाति नियम से इस समझौते का पालन करने लगी, शांति स्थापित हो गई। पर कोई एक निकल ही आता है जो बनी बनाई शांति को भंग कर देता है, और सर्पों में यह था कालिया नाग। कहते हैं कि कालिया नाग के 100 फन या यूं कहिए सर थे, और उसका विष ऐसा कि जिसको भी डस ले उसका बचना असंभव। इस सबसे उसे अपने बल और विष पर बहुत घमंड हो गया। बनी बनाई परंपरा को ठुकराते हुए वो उस सर्प को ही खा गया जिसे नियत पेड़ के नीचे गरुड़ के लिए रखा गया था। गरुड़ इस बात से आश्चर्य में आए, उनसे अधिक क्रोधित थी सारी की सारी सर्प जाति। वो जानते थे कि इसको नहीं रोका गया तो फिर से युद्ध होगा और कितने ही प्राण जाएंगे। सर्पों ने सारी बात गरुड़ों को बता दी। अब ये केवल सर्पों की समस्या नहीं थी, उनके साथ अब गरुड़ भी थे। वो समझ गए कि इसमें दोष केवल एक का ही है। एक गरुड़ को भेजा गया कि वो कालिया नाग को दंड देके उसका वध कर दे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कालिया ने अपने 100 के 100 फन फैला दिए। डस के उसने अपने विष से गरुड़ को मारने की कोशिश की, पर कहते हैं कि गरुड़ अमृत के वाहक होते हैं, इसलिए उन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। गरुड़ विष से मरा तो नहीं, पर पीड़ा में अवश्य आ गया। इस पीड़ा से तिल मिलाते हुए उसने अपने शरीर को जोर से झटका, जिसकी वजह से लिपटा हुआ कालिया नाग नीचे धरती की ओर गिरने लगा और सीधा जाकर के यमुना नदी में गिर गया। कालिया बहुत समझदार था। यमुना जी में एक कुंड था जिसमें गरुड़ नहीं आ सकते थे। उनके इस कुंड में न आने का कारण था एक श्राप, और वो श्राप कुछ इस तरह था कि एक बार सौभरी ऋषि के मना करने पर भी एक गरुड़ मछली को खा गया। उस कारण से सौभरी ऋषि ने गरुड़ों का इस कुंड में प्रवेश वर्जित करते हुए उन्हें श्राप दे दिया था। कालिया इस बात को जानता था। वो जाकर इस कुंड में छिप गया और सुरक्षित भी हो गया। धीरे धीरे इसी कुंड को कालिया ने अपना घर बना लिया और अपनी कई पत्नियों के साथ वहां रहने लगा। इसी कारण से इस जगह का नाम कुंड कालिय दह पड़ गया। कालिया वहां रहने तो लगा था, पर उसके भयंकर विष के कारण पूरी जगह संक्रमित यानी के विषैली हो रही थी। पूरा स्थान उजाड़ सा हो गया। कालिया नाग के विष के कारण ही यमुना में आसपास कहीं भी घास तक नहीं उगती थी, बस एक कदंब का पेड़ बच गया था। हुआ यूं कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ एक बार खेल रहे थे, और वो खेल रहे थे गेंद के साथ। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। यमुना में गेंद के लिए कौन प्रवेश करे, सब सोचने लगे, क्योंकि सबको मालूम था कि उसमें कालिया नाग रहता है और उसके विष से कितने ही पशु और मनुष्य मारे जा चुके हैं। तब कृष्ण बोले कि यमुना में वे स्वयं जाएंगे। सबने कृष्ण को मना किया, पर वे नहीं माने और नदी में कूद गए। मित्र भागते हुए मां यशोदा के पास आए और पूरी बात कह बताई। मां यशोदा घबरा के रोने लगी। बात धीरे धीरे पूरे गोकुल में फैल गई, पर कोई कर भी क्या सकता था। और दूसरी ओर जब कृष्ण यमुना के अंदर पहुंचे तो कालिया नाग की कई पत्नियां आईं और उन सब ने कृष्ण को वापस जाने के लिए कहा, पर कृष्ण अपना मन बना चुके थे। फिर कृष्ण के सामने खुद कालिया नाग आया। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़ने का आदेश दिया। कालिया ने यमुना छोड़ने से मना कर दिया। जब दोनों ही अड़ गए थे तब तो युद्ध होना ही था, स्वाभाविक था। भयंकर युद्ध छिड़ गया। कालिया अपने 100 फनों के साथ कृष्ण पर आक्रामक प्रहार करने लगा, पर कृष्ण इसके लिए तैयार थे। हार वार को विफल करते हुए वो वापस प्रहार करते रहे और बाहर यमुना के तट पर पूरे गोकुल की जान फंसी हुई थी। यमुना के भीतर युद्ध चल रहा था। बहुत देर, लंबे समय तक चले इस युद्ध के बाद कालिया समझ गया कि वो हार जाएगा। कृष्ण जीतते हुए कालिया के फन के ऊपर चढ़कर के नाचने लगे। कालिया ने अपने प्राण बचाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण बोले, ठीक है, पर कालिया को यमुना छोड़ के जाना होगा। इसमें भी समस्या थी, बाहर आते ही गरुड़ उस कालिया को मार देते। तब कृष्ण बोले कि उसके सर पर कृष्ण के पांव के निशान हैं, जिसे देख गरुड़ उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। इस तरह से आश्वस्त हो कालिया नाग ने यमुना जी को छोड़ दिया। दोस्तों, अब इस कथा में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये कि सर्पों ने अपने में से ही एक के लिए अपनी पूरी जाति का नाश नहीं चुना। जैसे एक सड़ा हुआ फल बाकी के फलों को भी खराब कर सकता है, वैसे ही किसी एक के कारण पूरा सिस्टम जब बिगड़ने लगे तो उस एक को चुन करके बाहर कर देना चाहिए। ऐसा ही सर्पों ने किया और ऐसा ही हम सबको भी अपने समाज, अपने घर या अपने ऑफिस में करना चाहिए, क्योंकि वो हम में से एक है। उसके लिए हमको पूरी जाति या पूरे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। है ना समझदारी की बात दोस्तों? आशा करता हूं कि आप इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। अपने मित्र शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।